السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ. اوکے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں بخارت سے اور انشاءاللہ آج ہم اینڈ میں اپنی ریڈنگ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ویک ہم لوگوں نے دانتوں کے نام بھی دیکھے تھے اور پھر ہم نے حافت اللسان میں لام کا مخرج کیا تھا. اگر کسی کو کوئی سوال ہے پچھلے والے مخارج سے ریلیٹڈ تو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ بوت کے مخرج سے کنٹینیو کریں گے. جی پوچھیے آپ سوال. تھوڑا سا ہم دانتوں کے ناموں کو ریویو کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جو فرنٹل اپر انسائزرز ہیں وہ آپ کے ثنایا ہیں, دو ثنایا علیا. پھر جو لیٹرل انسائزرز ہیں وہ رباعیات. پھر اس کے بعد شارپ ایج والے دانت ہیں جو کہ انیاب کہلاتے ہیں. اور پھر ہمارے دو پری مولرز, تو تھوڑے چوڑے دانت ہوتے ہیں جنہیں ہم بواحق کہتے ہیں. پھر تھری لاسٹ میں جو تھری مولرز ہیں اتبواحین, دونوں سائڈس پر تھری رائٹ پہ ہیں تھری لیفٹ پہ ہیں. پھر اس کے بعد لاسٹ میں وزڈم ٹیتھ آ جاتے ہیں النواجد, جو کہ ون رائٹ پر ہے ون لیفٹ پر ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ون تھرڈ فرنٹل سائڈز آف دا ٹنگ الانگ ود دا ٹپ, آپ کے سامنے کے جو اوپر کے آٹھ دانت ہیں ان کے گم ایریا سے ٹچ کرے گا. ٹھیک ہے, لام میں لام کو ادا کرتے ہوئے جو آپ کی ٹپ آف ٹنگ ہے وہ سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کی گم لائن سے تھوڑا سا پیچھے ہوتی ہے. ایگزیکٹ گم لائن پر نہیں ہوتی بلکہ گم لائن سے ہلکا سا پیچھے ہوتی ہے. اور پھر یوں زبان آپ کی سائڈس پر بھی پھیلتی ہے اور سامنے کے آٹھ دانتوں کے گم ایریا کو کور اپ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آ جاتے ہیں بوت کے اوپر. حافت اللسان سے جو دوسرا مخرج آتا ہے وہ ہے بوت. بوت کے اندر جیسے آپ نے دیکھا کہ ون تھرڈ جو فرنٹل سائڈز ہیں وہ ہم نے استعمال کی بوت کے لیے, سوری لام کے لیے. اب ہم آ جاتے ہیں ٹو تھرڈ پوسٹیریئر سائڈز کے اوپر. ٹھیک ہے, ٹو تھرڈ پوسٹیریئر سائڈ سے کیا مراد ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر آپ ایک اوول شیپ بنائیں اور اس کو تھری ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کریں تو جو فرنٹل فرسٹ ایریا ہے, جو فرسٹ آپ نے ڈویژن کی ہے وہ ادن اللسان کی, وہ ساری سی شیپ میں جا کے آپ کی لام کے لیے ہٹ کر رہی ہوتی ہے. یعنی جو سامنے کا سی شیپ کہہ لیں, الٹا یو کہہ لیں, وٹ ایور یو وانٹ, اس میں وہ جو ایریا ہے وہ جا کے آپ کا آٹھ دانتوں کے گم ایریا کے ساتھ ٹچ کر کے لام ادا کر رہا ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو پیچھے آپ کی رہ گئی ہیں ٹو تھرڈ سائڈز, نہیں ادنا زبان کو ڈیوائڈ نہیں کرنا تھری میں, پوری زبان کو آپ نے تھری پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا ہے. تو جو فرنٹل پارٹ ہوگا وہ ثنایا کو بھی لگیں گی, رباعیات کو بھی لگیں گی, ناب کو بھی لگیں گی اور دواحق کو بھی, فور ٹیتھ کے گمز کو, یہ فور رائٹ سائڈ پہ فور لیفٹ سائڈ کے اوپر ان سب کے گمز کو لگیں گی. ٹھیک ہے, اب جب جو ہمارے پاس ٹو تھرڈ پیچھے والا حصہ رہ گیا اور یہ سائز آپ کی کہاں پہ آ رہی ہے, ون رائٹ سائڈ پہ ہے और लेफ्ट साइड पर, ठीक है, ये साइज आपकी राइट लेफ्ट पर आ रही है। मैंने आपको बताया था कि जो शुरू की साइज है वो आपकी गोलाई में आ रही है, वो आपकी राइट लेफ्ट नहीं है, वो आपकी गोलाई में आ रही है। ये वाली जो साइज है ये आपकी राइट साइड पे है और लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, जो टू थर्ड आ रही है, वसत लसान के किनारे जो है वो, और जो अकसल लसान के किनारे हैं वो। अब ये वाला जो एरिया है वसत का और अकसा का, टंग की जो साइड्स हैं, इनको हम कहते हैं टू थर्ड यानी दो तिहाई पोस्टीरियर साइड्स। पोस्टीरियर से क्या मुराद है? वो वाली साइड्स जो के जबान के बैक की तरफ हैं, ठीक है, यानी अकसल लिसान पीछे वाला जो हिस्सा है उसकी तरफ, वसत और अकसा में ये आ रही होती हैं साइड्स। अब ये जब टू थर्ड पोस्टीरियर साइड्स आपकी ऊपर जो लास्ट वाले टीथ हैं फोर या एट टीथ को टच करती हैं तो हमारा लेटर आता है बॉड। बस टीचर्स कहते हैं कि फोर टीथ को, यानी फोर टीथ इन अ सेंस कि अगर आप सिर्फ राइट एरिया यूज कर रहे हैं या आप सिर्फ लेफ्ट एरिया यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि राइट और लेफ्ट कोई एक साइड इस्तेमाल करना बॉड को बोलने में आसानी पैदा कर देता है, यानी आप आसानी से उसके मखरज को हिट भी कर देते हैं और रिक्वायर्ड साउंड भी निकाल सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मे बी कुछ लोग ऐसे हों जिनको आसान ये होता हो कि वो राइट एरिया इस्तेमाल करें या वो लेफ्ट एरिया इस्तेमाल करें, ठीक है, और बाज लोगों के लिए ये आसान होता हो कि वो दोनों ही साइड्स को लगाएं तो उनका बहुत बेहतर आता है। खुद पर्सनली मुझे ये लगता है कि दोनों साइड्स को इस्तेमाल करने से एक अच्छी और स्ट्रांग साउंड आती है, क्योंकि अगर मैं एक साइड इस्तेमाल करके बोलने की कोशिश करती हूँ तो मुझे लगता है कि साउंड और जो प्रेशर ऑफ साउंड है वो दूसरी साइड ना लगने की वजह से लीक आउट हो जाता है, ठीक है। तो आपकी टू थर्ड पोस्टीरियर साइड्स ऑफ द टंग ऊपर के जो चार दांत हैं, ठीक है, चार या आठ दांत, उनके गम और थोड़ा बहुत कैल्शियम पार्ट भी इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है, उनके साथ लगेंगे। लब्रोस, उनको हम कहते हैं लब्रोस, एक्चुअली अब्रोस, ठीक है, जो आपके अतबवाहीन और अनवाजिज हैं। तो आप टंग को इस तरह करके लगाएंगे कि वो कैल्शियम पार्ट को भी लगेगा, आपकी जो साइड्स हैं वो टूथ एरिया जो है उसको भी टच करी होंगी और गम्स पर भी जा रही होंगी, यानी जो अतबवाहीन और नवाजिज के गम हैं उसके ऊपर भी आपकी साइड्स जा रही होंगी। ठीक है, तो यूं फैल कर आपकी जबान साइड्स पर लगेगी। टू थर्ड पोस्टीरियर साइड्स ऊपर के चार या आठ दांतों और उनकी गम्स को टच करी होती है। अब अगर हम आठ दांतों को कंसिडर करें तो आठ दांतों में ये होगा कि आपकी ना टंग की पोजीशन कुछ इस तरह से बनेगी कि आप देखें कि इसमें ना, जी, फोर टीथ आपके राइट साइड के और फोर टीथ आपके लेफ्ट साइड के। इसमें जो चीज आपकी इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब हम ये कहते हैं ना पोस्टीरियर साइड्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये परसीव करते हैं कि शायद बहुत बैक वाला एरिया इस्तेमाल करना है, बहुत पीछे से आपने इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है, गो के आपने पीछे वाले टीथ को यूज करना है, मगर ये बवाहिक के बाद बाद आ रहा है, यानी अगर आप इवन स्माइल करते ना थोड़ा खुल के तो आप उस एरिया को देख सकते हैं जो कि आपने दांत के लिए टच करना है, ठीक है। तो इसमें आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ये बहुत बैक पे नहीं है, टंग आपकी फ्रंट की तरफ आ जाएगी, और टंग को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है कि जो पैरेलल पार्ट है वो ही टच करे, यानी ऐसा नहीं करना कि आप उसको ट्विस्ट करें कि जो सामने वाला हिस्सा है उसको पीछे लेके जाके हिट करें, नहीं, आप अपनी टंग को स्ट्रेट रखेंगे जो 2/3 पोस्टीरियर पार्ट के पैरेलल हिस्सा आ रहा है, वही जाकर आपके लास्ट वाले टीथ को भी टच करेगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा, ये एक्चुअली मखरज से बहुत की साम की अचीवमेंट थोड़ी डिफिकल्ट है, तो हम इसको ना पूरा एक एज अ होल डिस्कस करते हैं। कुछ और चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं जिससे कि आपकी साउंड परफेक्शन तक जाएगी। जी बिल्कुल, आपने टर्निंग इन अ सेंस कि आपने जबान का सामने का हिस्सा जो है वो पीछे लेकर नहीं जाना, बल्कि जबान स्ट्रेट रख के जो पैरेलल हिस्सा आ रहा है वही आप ऊपर उठा के टच करेंगे। जो पैरेलल साइड जा रही है दांतों की, दांतों के लास्ट 4 और 8, जो 4 या 8 टीथ के पैरेलल साइड जा रही है वही टच करेंगे ऊपर रूफ को। अच्छा, अब इसमें ना होता यह है कि जो आपकी साइड्स हैं 2/3 वो ऊपर चली जाती हैं, 2/3 पोस्टीरियर साइड्स वो आपके दांतों के साथ है, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी, सही। और फिर जो जबान का डीप पार्ट है वो आपका ऊपर की तरफ उठ जाता है, जो डीपेस्ट पार्ट ऑफ टंग है, कॉफ का मखरज, ये आपका ऊपर उठ जाता है। ये क्यों ऊपर उठता है? ये बेसिकली लेटर को हैवी करने के लिए ऊपर उठता है। इसका मखरज से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसका इसकी सफात से ताल्लुक है। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ द टंग। तो इसमें जो डीप पार्ट है आपका, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका ऊपर रूफ की तरफ चला जाता है ताकि लेटर के अंदर हैवीनेस क्रिएट की जा सके। ठीक है, 2/3 पोस्टीरियर साइज आपकी ऊपर टच कर गई, डीप पार्ट आपका ऊपर टच कर गया। अब क्या होगा फ्रंटल 1/3 पार्ट ऑफ टंग के साथ, जो जबान का 1/3 सामने का हिस्सा रह गया है उसके साथ क्या मामला किया जाए? आप देखें कि जब इतना ढेर सारा हिस्सा जबान का ऊपर चला गया है, यानी 2/3 पोस्टीरियर साइड चली गई हैं, डीपेस्ट पार्ट ऑफ टंग आपका ऊपर की तरफ हो गया है, तो इट्स रियली हार्ड कि आप टिप को कहीं और एडजस्ट करें। टिप ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी, टिप जो है वो आपकी मतलब इट्स हार्ड कि आप उसको किसी और तरह से नीचे लेकर आने की कोशिश करें या यानी उसको कुछ और उसके साथ मामला करें। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि सारी टंग का रुझान ऊपर है, तो जो 1/3 लाम का जो मखरज हो रह गया वो आपका खुद ही ऊपर की तरफ जाएगा और आपकी टिप ऑफ टंग में एक नेचुरल मोशन आएगी, नेचुरल फॉरवर्ड मोशन आएगी। और आपकी टिप कहाँ चली जाएगी? दाल के मखरज के पास। अभी हमने दाल का मखरज नहीं पढ़ा, तो हम ये कह देते हैं कि ये कहाँ चली जाएगी? सामने के जो ऊपर के दो दांत हैं, सनाया उलिया, उनके करीब चली जाएगी। सनाया उलिया की गम लाइन के करीब चली जाएगी, सही। ये आपकी टंग की सारी पोजीशन बनती है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। एक चीज का ध्यान रखें कि आपकी टिप ऑफ टंग हिट नहीं करेगी सनाया उलिया के गम्स को, ये सिर्फ और सिर्फ उसके क्लोज जाएगी। यानी जैसे आप, यानी इस तरह से ये होगा कि जैसे टंग पुश करी है कि वो दांतों के गम को हिट करे और आप पुश करे हैं उसको पीछे की तरफ के, नहीं, यू डोंट नीड टू हिट इट। ठीक है, तो वो एक इस तरह की फीलिंग आपको आ रही होगी कि टंग आपकी क्लोज भी है मगर वो टच नहीं करी, सही। ये इसकी पोजीशन बनती है टंग की जब आप बौद्ध हर्फ अदा कर रहे होते हैं। जो आपका फ्रंटल 1/3 एरिया है वो फ्री होगा, जो प्रेशर है यानी प्रेशर लेस होगा, प्रेशर नहीं गेन करेगा, ना टिप आपकी प्रेशर लेगी ना आपका जो आपकी साइड्स हैं फ्रंटल 1/3 साइड्स वो भी प्रेशर नहीं लेंगी। ठीक है, और सारा प्रेशर कहाँ होगा? 2/3 पोस्टीरियर साइड्स के ऊपर। जी बिल्कुल, जब हम बॉ बॉ बोल रहे होंगे तब। नहीं, टिप टच नहीं करेगी आपकी कभी भी। आपकी टच, जो आपकी टिप है, बस उसमें एक मोशन सी आएगी और वो दाल के करीब चली जाएगी, वो वहां टच नहीं करेगी, वो वहां प्रेशर नहीं लेगी। अगर आप उसको प्रेशर दे देते ना, तो जो हिस्सा प्रेशर ले रहा होता है लेटर की अदायगी में, जिस हिस्से के ऊपर प्रेशर आ रहा होता है वही मखरज होता है। अगर आपकी टिप प्रेशर ले रही है, इट मीन्स के आपका मखरज दुरुस्त नहीं है। आपका सारा सेंटर ऑफ प्रेशर 2/3 पोस्टीरियर साइड होंगी, वो प्रेशर ले रही होंगी। फ्रंटल 1/3, क्योंकि इतना ढेर सारा हिस्सा ऊपर है इसलिए वो ऊपर ही जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक मोशन आएगी कि वो ऊपर की तरफ जरूर जाएगा, मगर वो प्रेशर नहीं लेगा। ठीक है, वो प्रेशर अचीव नहीं करेगा। अब ये जो शेप हमने मैंने आपको बताई टंग की, ये ऑलमोस्ट लाइक अ बोट शेप है। ठीक है, बोट शेप आपकी बन जाएगी। बोट शेप कैसे बन जाएगी? आप अगर बोट को देखें तो आप देखें बोट में क्या होता है, जो साइज होती है दोनों, जो बिल्कुल फ्रंट होता है और जो बैक होता है, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। जो राइट साइड होती है और लेफ्ट साइड होती है, वो भी थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, इसी तरह बोट होती है ना। और जो सेंटर पार्ट ऑफ टंग होता है, बाइलेटरल सेंटर, जो लंबाई के रुख में आपका सेंटर बनता है, वो कहाँ होता है? वो डाउन होता है। आपकी टंग भी ऐसे ही होगी, आपने सेंटर से भी उठा के ऊपर टच नहीं कर देनी, सिर्फ साइड्स इन्वॉल्व हैं। व्हाट इज द मखरज? साइड ऑफ द टंग, बाइलेटरल सेंटर नहीं। ठीक है, जो लंबाई के रुख पर आपका दरमियान वाला हिस्सा है जबान का, वो आपने ऊपर उठा के रूफ के साथ टच नहीं करना। ठीक है, जस्ट रिमेम्बर द बोट शेप, कि डीप पार्ट ऊपर है, साइज आपकी ऊपर है, साइज आपकी हिट करेंगी, 2/3 पोस्टीरियर साइज आपकी हिट करेंगी। डीप पार्ट ऊपर रूफ के बहुत क्लोज होगा, टिप आपकी रूफ के बहुत क्लोज होगी, मगर वो वहां हिट नहीं करेगी, प्रेशर नहीं लेगी। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। समझ में आया मखरज और पोजिशन ऑफ टंग के किस तरह से हमने इसको रखना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम इसके थोड़े से कॉमन एरर्स जो है वो देख लेते हैं, ताकि इसकी प्रैक्टिस में हमें इस चीज का भी अंदाजा हो कि क्या क्या कॉमन एरर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी आई नो इट्स रियली हार्ड। मिडिल पार्ट ऑफ टंग, मुझे नहीं समझ में आया कि मिडिल आप किससे मुराद ले रही हैं, क्योंकि जो वसत लसान है और जो अकसर लसान है उसकी साइड्स तो आपकी ऊपर जा रही होंगी। ठीक है, और जो बायलेटरल सेंटर है, मैं इसको इसीलिए मिडिल नहीं कह रही ताकि आप मिडिल से कंफ्यूज ना हो। लंबाई के रुख पे भी तो आप देखें एक मिडिल आ रहा है ना आपका, यानी आपकी एक साइड है राइट साइड, एक साइड है लेफ्ट साइड, और जो सेंटर में पार्ट आ रहा है वो कहाँ जाएगा? तो वो बोट की तरह डाउन रहेगा थोड़ा, वो ऊपर रूफ को टच नहीं करेगा। सो ये आपने इस तरह से पोजिशन रखनी है। जी बॉट जो है वो बहुत मुश्किल लेटर है, नॉट ओनली फॉर अस, हमारे लिए तो है ही डेफिनेटली, इवन अरब्स को भी अब बॉट में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो इसलिए, और मुझे खुद इसमें एक बहुत हार्ड टाइम देखना पड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फोनिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, यानी फॉरन फॉरन साउंड को अचीव कर लेते हैं। तो अगर आप उन लोगों में से नहीं हैं और आप मेरे टाइप के लोगों में से हैं कि आप फोनेक्स को इतना अच्छा जल्दी पिक नहीं कर सकते, तो उसमें फिर आप ना इस तरह से करें कि जस्ट कीप हिटिंग द एरिया, मिरर में अपने इस पार्ट को रिकॉग्नाइज करें कि आप जो आपका 2/3 पोस्टीरियर साइड्स कहाँ है। आप मुंह को खोल के देखें, आप देखें बवाहिक के बाद पीछे पवाहीन और नवाजिद कहाँ हैं, और फिर आप जबान के उस हिस्से को उठा के ऊपर टच करते रहें, लाइक जस्ट कीप हिटिंग द एरिया विदाउट सेइंग एनी साउंड। क्योंकि बॉट की साउंड तो आना बड़ी दूर की बात है, मेरी तो कोई भी आवाज नहीं आती थी जब मैं इस एक एरिया को, इस मखरज को हिट करती थी। वो जब मैं अपने टीचर्स को कहती थी तो वो कहते थे कि क्योंकि ये डेड एरिया होता है सो यू नीड टू मेक इट अलाइव, हिट करते रहे ताकि वो साउंड दे, तो आप इसको हिट करते रहे तो उससे इंशाल्लाह जो है ये आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। हाँ जी आप कह सकते हैं फ्रंट स्पून फॉर बॉड। जी करवट से जो साइड्स है ना जबान की उससे करेंगे, पोस्टीरियर साइड से करेंगे। ओके सही। अब हम इसमें थोड़ा सा कॉमन एरर देख लेते हैं बॉड के, ताकि जब हम प्रैक्टिस करें तो हम माइंड में रखें कि हम ये गलतियां प्रैक्टिस ना करें हम। सबसे पहले तो ये कि बॉड की साउंड के अंदर टिप ऑफ टंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है, यानी टिप से इसको बोला जाता है, बिल्कुल दाल की तरह हैवी करके, जैसे हम दाल को बोलते हैं ना अद, और फिर दाल ही को आप हैवी कर दें, द द द, तो अब ये बिल्कुल टिप से साउंड दे रही हूँ, द द, ये साउंड। तो अगर आप दाल, यानी आपकी सारा प्रेशर टिप के ऊपर आ रहा है और आप टिप से दाल बहुत को बोल रहे हैं, दैट्स अ रॉन्ग वे, और देयर इज अ डिफरेंस इन द साउंड। दा बो, ये साउंड दा नहीं है, द नहीं है, बल्कि बो है। आप फील कर सकते हैं कि साउंड आपकी बैक से आ रही है। ओके सो फर्स्ट एरर तो हो गया कि टिप ऑफ टंग से साउंड आ रही है। सेकेंड एरर ये हो गया कि समटाइम्स आप टिप ऑफ टंग को अवॉइड करने लग जाते हैं, आप चूंकि आपको पता है मखरज नहीं है टिप, तो आप कोशिश करते हैं कि आपकी टिप हिट ना हो, लेकिन चूंकि हम बिल्कुल साइड ऑफ टंग इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो हमारा ना जीम का मखरज लगने लग जाता है, जो वसतुल लिसान है वो हिट होने लग जाती है। तो हमारी साउंड कैसी आती है, डॉ, ये साउंड आती है डॉ, लाइक अ डी साउंड, डी डी साउंड ऑलमोस्ट इस तरह की साउंड आती है, डॉ डॉ, ये भी दुरुस्त नहीं है। ठीक है, आपने मेनली जो प्रैक्टिस आपने करनी है, आप इसको, आप प्रैक्टिस को स्टार्ट कैसे करें, आप मेन प्रैक्टिस ऐसे करें कि आप अक को कॉफ के अब मखरज को ऊपर लेकर जाएं, अप उसे टच करें, फिर उसको हिट रहने दें वहां पे, देन सी इन अ मिरर कि आपका बॉड का मखरज, आपकी जो साइड्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएं, और 2/3 जो पोस्टीरियर साइड्स हैं वो आखिर के जो लास्ट वाले 4 दांत हैं फ्रॉम राइट साइड एंड 4 फ्रॉम लेफ्ट साइड, वो उसको टच कर रही हूं, ऊपर जाके हिट करें उसको। ठीक है, जब आप टंग की ये पोजिशन बनाएंगे तो आप एटलीस्ट एबल होंगे कि आप साउंड को प्रोनाउंस कर सके, बो बो, ये साउंड आनी चाहिए। ठीक है, और मिरर प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प कर सकती है, क्योंकि ये वो पार्ट ऑफ द टंग है जिसको हम बहुत अच्छा देख नहीं पाते, आई मीन फील नहीं कर पाते, या समटाइम्स हमें पता होता है कि ये वाला एरिया इसमें इस्तेमाल होगा मगर हम उसको बहुत अच्छा फिर भी हिट नहीं कर पाते। तो इसमें जिस चीज का आपने ध्यान रखना है वो यही कि मिरर प्रैक्टिस करें, ताकि आप मिरर में उस एरिया को देख सकें और आपको पता चल सके कि आप राइट एरिया इस्तेमाल करें। बॉथ के बारे में एक और अहम चीज, और वो ये कि बॉथ की साउंड के बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन ये भी रखा जाता है कि बाज लोग कहते हैं कि इसकी साउंड दाल की तरह है और बाज लोग कहते हैं कि इसकी साउंड जौ की तरह है। तो एक्चुअली इसकी साउंड ना तो दाल की तरह है और ना ही जौ की तरह है। दाल की जो साउंड है वो मैंने आपको बताई, जैसे अ द, ये साउंड है, और जो अल्लाह, ये लॉ की साउंड है, अल्लाह ये साउंड है। तो एक्चुअली इमाम इब्नुल जजरी ने क्लियरली अपने मंदूबा में मेंशन किया है कि आप दौर की साउंड को सॉरी दौर की साउंड को रॉ से मिक्स ना करें, ठीक है? तो ये आपकी साउंड रॉ के क्लोज नहीं जानी चाहिए, रॉ की साउंड की तरह नहीं होगी। ये एक्चुअली बैक से आती है, 2/3 आप पोस्टीरियर साइड्स पीछे वाली इस्तेमाल करते हैं, तो साउंड दाल की तरह थोड़ी बहुत फील हो रही होती है। मगर जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, यानी जो जब आप भी इंशाल्लाह, या आप में से जिनका बहुत अच्छा होगा, वो इस चीज को फील कर सकते हैं कि देर इज अ बिग डिफरेंस इन अ साउंड। यानी जो एक्सपर्ट्स होते हैं फोनेक्स में या तजवीद में बहुत माहिर होते हैं और अच्छे उस्ताद होते हैं, जो कि साउंड के अंदर बहुत बारीक साउंड्स के अंदर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो उनको ये पता चल जाता है कि आप टिप से बोल रहे हैं या आप साइड इन्वॉल्व करें। इवन आपको पता है दाल की जो टिप की साउंड है, और इंशाल्लाह हम जब दाल को देखेंगे तो भी हम ये डिस्कस करेंगे, इवन दाल की टिप की साउंड और दाल की टॉप की साउंड, हम जब दाल बोलते हैं ना तो हम टिप से नहीं बोलते, उर्दू में दाल टिप से नहीं आता, उर्दू में दाल टॉप ऑफ टंग से आता है। तो टिप और टॉप की साउंड में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, और टीचर्स इस चीज को रिकग्नाइज कर सकते हैं कि आप दाल टिप से बोल रहे हैं या आप दाल टॉप से बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये जो साउंड है, ये जब आप दा यानी दौ जब आप टिप से बोलते हैं या दौ जब आप साइड से बोलते हैं, तो उसकी साउंड में एक बड़ा डिफरेंस है। जो हम मतलब अगर हम अर्ली तजवीद में हैं या हम बहुत इनिशियल पार्ट ऑफ तजवीद सीख रहे हैं, तो हम शायद उस फोनिक को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हमें उस साउंड का डिफरेंस नहीं पता चल रहा होता, मगर उस्ताद को पता चल रहा होता, ठीक है? तो बहरहाल जो दौद है उसकी साउंड ना दाल की तरह है ना वॉ की तरह है, इसकी डिफरेंट साउंड है, जो कि अपनी ही इसकी साउंड है। वो तभी बेहतर आती है जब आप 2/3 पोस्टीरियर साइड्स को इस्तेमाल करते हैं, और मैंने देखा कि दौर कभी भी बेहतर नहीं होता जब तक कि आपका डीपेस्ट पार्ट ऑफ टंग भी ऊपर ना जाए। बाजू का आप उसे मोटा कर रहे होते हैं मगर आप डीप पार्ट ऊपर नहीं लेके जा रहे होते, तो उससे भी साउंड बहुत खराब आती है। तो मेक श्योर कि आपका डीप पार्ट जो कॉफ का मखरज है वो भी ऊपर रूफ की तरफ ही जा रहा हो, सही? बात समझ में आ गई अब बौद्ध के बारे में? अभी अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो करें, और वो जैसे टीचर्स कहते हैं हमेशा के प्रैक्टिस के साथ साथ, दो चीजें जो आपको सक्सेस तक लेकर जाती हैं, एक प्रैक्टिस और दूसरा दुआ। तो दुआ तो मोमिन का हथियार है, वैसे भी नहीं डालने चाहिए। तो इंशाल्लाह कीप मेकिंग दुआ फॉर योर सेल्फ कि अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन तरीके के साथ समझने की और फिर उसको प्रैक्टिस करने की तौफीक दे। और कभी भी इस चीज से ना घबराएं कि यू आर स्टिल मेकिंग लॉट ऑफ एरर, अभी तक ये ठीक नहीं हो रहा, अभी तक वो ठीक नहीं हो रहा, इसके अंदर बहुत बेहतरी और बहुत खैर होती है। मैं जब अपने टाइम पीरियड को देखती हूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया, दौर मुझे एक दौर नहीं, मुझे बहुत सारी चीजों ने एक अरसा तक लटका के रखा, एंड आई वॉज जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। और कभी तो मैं फ्रस्ट्रेट होके ये सोचती थी कि या अल्लाह क्यों नहीं आता, यानी क्योंकि मैं पार्ट्स को रिकग्नाइज बहुत अच्छा कर लेती थी मगर साउंड को उतना अच्छा जल्दी पिक नहीं करती थी। यानी टंग की मोशंस मुझे पता चलती थी मेरे मुंह में क्या हो रही है, लेकिन उस साउंड को मैं बहुत जल्दी पिक नहीं करती थी। तो अगर मैं एक टंग की मोशन करके किसी एक एरर को ठीक करने की कोशिश करती थी, तो मैं एक दूसरी गलती साथ ऐड करती थी, जो जब मैं फिर टीचर्स को सुनाती थी तो मुझे पता चलता था अब नई गलती सीख ली है, एक को ठीक करते करते दूसरी आ गई है। तो बहुत सारी चीजों ने एक लंबा टाइम ट्रबल दिया, यानी कोशिश डिमांड की, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा डिमांड की, और उस वक्त तो फ्रस्ट्रेट होता है जब हम स्टूडेंट टाइम में उसको प्रैक्टिस करे होते हैं कि ये अभी तक ठीक नहीं हो रही चीज, लेकिन आज मैं उसका बहुत फायदा देखती हूँ कि जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो मुझे पता चलता है कि ये तो वही गलतियां हैं जो मैं किसी टाइम में करी थी, तो मैं उनको एक बेहतर तरीके के साथ एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि आप ये अपने मुंह में कर रहे हैं और आपकी टंग यहाँ जा रही है और यहाँ नहीं, इसको यहाँ होना चाहिए। तो इसमें बहुत खैर है कि आप हर गलती से गुजरे, क्योंकि मैंने हर गलती खुद की है तो मैं उसको फील कर सकती हूँ। तो इसलिए ये चीज बहुत अच्छी है, यानी आप इससे घबराए नहीं, अल्लाह ताला इसमें भी खैर है। और फिर आप देखें कि हमेशा माइंड में रखें, इट्स अ विन विन गेम, कि आप जो है अचीवर्स हैं या आप ज्यादा अचीवर्स हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो दोनों में ही आपके लिए बेहतरी है। बस मेन चीज ये है कि अल्लाह ताला हमसे उस चीज को कबूल कर ले। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल प्रैक्टिस डिमांड की जाती है। आमीन इंशाल्लाह। तो दुआ भी अपनी बिल्कुल साथ साथ रखें, अपने लिए खूब सारी दुआएं भी करें तजवीद की प्रैक्टिस के दौरान इंशाल्लाह। अब अगर हम देखें तो हमने टंग के कौन कौन से पार्ट्स कवर कर लिए। सबसे पहले हमने अक्सल लसान को देखा, फिर हमने वसतुल लसान को देखा, और फिर हमने हफतुल लसान के दो मखारिज किए। सही। अब हमारा एक मखरज रह गया है और वो है रसुल लसान। जिसको तरफ भी कहते हैं, तरफ उल लसान भी कहते हैं। रॉस हेड को कहते हैं ना, रॉस, रॉ एंड देन हमजा एंड देन सीन। हमजा जो है वो अलिफ की चेयर पे आएगा यहाँ पे ना, रॉस उल लसान। और इसको तरफ भी कहते हैं, तरफ उल लसान। ये हमारा लास्ट मखरज है, आई मीन लास्ट पार्ट ऑफ दी टंग है, ठीक है, जिसके अंदर से बहुत सारे मखारे जा रहे होते हैं। जैसे हमने टंग को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, तो अदनल लिसान से कोई भी लेटर नहीं आता, नहीं, पूरा अदनल लिसान आपका किसी भी हर्फ के लिए इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जो एग्जैक्टली हेड ऑफ दी टंग है वो आपकी इस्तेमाल होती है। तरफ जो है वो तो से है, तो रॉ एंड फा, तरफ लसान। और रस, रॉ अलिफ ही की चेयर के ऊपर हमजा होगा, फिर रस अल्लसान। जी, अल्लसान को लिखते हुए ना हमेशा डबल लाम लिखा जाता है, एक लाम तारीफ होता है और एक लसान का लाम होता है। सही। तो ये बिल्कुल जी, इसको टिप ऑफ टंग कहते हैं। तो ज्यादातर हमारे जो लेटर्स हैं वो टिप से आते हैं, कोई एक आध ऐसा लेटर भी है जिसमें टिप के साथ टॉप भी इस्तेमाल होती है, टॉप ऑफ द टंग, मगर पूरा अदना जो है वो हम इस्तेमाल नहीं करते किसी भी लेटर में। जी बिल्कुल, ये सही होगा, रस लिसान ठीक हो गया। सही, ओके, दरफुल लसान और रसुल लसान। तो इंशाल्लाह इसके जो लेटर्स हैं वो अब हम नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे। नहीं, टिप सिर्फ रसुल लसान के अंदर आती है, बिल्कुल हेड ऑफ द टंग। बिल्कुल, जो शार्प टिप है ना वो, चूंकि ज्यादा लेटर्स के लिए हम वही इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम इसको जनरली रस या तरफ कह देते हैं। सही। तो इंशाल्लाह इसके जो मखारिज हैं वो अब हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। अभी हम थोड़ी रीडिंग कर लेते हैं, आप लोग निकाल लीजिए अपना अपना लेसन और हैंड भी रेस कर लें। हम पढ़े थे सूरतुन नबा, और आयात नंबर तो आप बताएंगे मुझे इंशाल्लाह। जी 17 till 22। जज़ाकिल्लाहु खैर। क्लास टाइम 7 8 9 10, आई थिंक 10:30। 35 क्वेश्चन होती है ना आपकी तजवीद की क्लास, 10:35 से लेकर 11:35 AM EST जो टाइम है वो है जी। ओके ठीक है, मैं माइक छोड़ती हूँ, आप फर्स्ट सिस्टर पढ़िए आप आयात को।
वबरकातु, मेरी आवाज आ रही है जी? आय नंबर 17 टिल 22। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन यौमल फस्ल काना मीकाता, यौम युनफखु فِالصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُجِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا للطاغين مآبا. جزاك الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
امين وياكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جي. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جب ہم نا اگر ہم مخارج کو دیکھیں تو جتنے مخارج ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں تھوڑا سا لام کے مخرج پہ پریکٹس کیجئے، جیسے یومل فصلی تو آپ کا پورا ایریا ہٹ ہونا چاہیے، یومل فصلی ٹھیک ہے. پھر جو دوسرا مخرج مجھے ویک لگا وچ از یا وسجی، یہ بہت فارورڈ ہے ٹھیک ہے، تھوڑا سا پیچھے سے اٹھائیں جیسے ہم لین بولتے ہیں، وسوئی سوئی، بالکل آپ نے ویسے بولنا ہے، وسوئی وسوئی، صرف تشدید کو پرومیننٹ کریں، وسوئیرتل جبال ٹھیک ہے، یا کے مخرج پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. دین ہا جہن جہنم، تو یہ جو تھوڑا سا ہا ہے یہ ابھی بھی اوپر ہے ٹھیک ہے، یعنی ان بٹوین اقصا اینڈ وسط ہے، تو اس کو تھوڑا اور ڈاؤن کریں، جہنم. پھر آیا نمبر 18 میں یوم ینفخ فی الصور، جو خ ہے آپ کا تھوڑا سٹریچ ہو گیا تھا، لمبا ہو گیا تھا، اس کو لمبا نہیں کریں گے صحیح. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پریکٹس کرنی ہے نا وہ یہ کہ ریلیکس ہو کے، بالکل ریلیکس ہو کے پڑھیں، لیٹرز کو آپ نے پریشرائز نہیں کرنا، جیسے ساؤنڈ آ رہی تھی ان یومل یومل، اب آپ دیکھیں یو جو ہے یہ بہت مطلب واو کے اندر تھوڑا نا ایکسٹرا پریشر آ گیا، تو آپ نے بالکل ریلیکس کر کے سافٹ کر کے یا اور پھر واو، یو یوم الفصلی ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے جیسے آئی نمبر 19 میں ورڈ تھا وفوتحت السماء، یہاں پر بھی آپ کا نا تس تھوڑا جلدی اور تھوڑا پریشر کے ساتھ ملا، وفوتحت السماء، آپ نے اس کو تی کو بھی مکمل رکھنا ہے، زیادہ ڈریگ بھی نہ ہونے دیں اور اتنا جلدی نہ کریں کہ وہ اگلے لیٹر کو پریشرائز کر دے ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا ریلیکس کر کے للطاغین مآبا، بالکل اس طرح سے ٹھیک ہے. چلا جزاک اللہ خیرہ جی، نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. صدق الله العظيم.
Amin wa yakum. Jazakillahu khaira. Okay. جی جتنے مخارج ہم پڑھ چکے ہیں ان میں سے اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا ابھی آئین کے اوپر نا پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو آپ ہا کے ساتھ پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, سوری میری آواز تھوڑی خراب ہے. جیسے فار ایگزامپل الرحمن الرحمن الرحیم, یہ جو ہا ہے یہ آپ کا بہتر آ رہا تھا, تو اس کے ساتھ آپ نے نا آئین کو پریکٹس کرنا ہے کہ جس پوائنٹ سے ہا کو انیشیٹ کرے ہیں وہیں سے آئین کو بھی کریں. ہو او او, ٹنگ کو بالکل اسٹریٹ رکھے, تھوڑا ڈاؤن جائیں. او او زو باللہ, ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے آئین کو جو ہے وہ تھوڑا بھی مزید پریکٹس کرنا ہے. پھر جو قوف کا ہٹ تھا اس کو تھوڑا اور اسٹرانگ کریں, یعنی میں فیل کر سکتی ہوں کہ آپ کا مخرج پڑ جا رہا ہے مگر وہ بہت اچھا ہٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, کا نمی قو قوتا می قوتا, تو تھوڑا سا قوف کے مخرج کو بھی آپ نے مزید پریکٹس کرنا ہے. پھر یوں خو خو, جو خوا کی ساؤنڈ ہے وہ کہیں مس ہو گئی تھی, مطلب اچھی آواز اس کی نہیں آئی, تو آپ اس کو اتنا ٹائم دیں کہ اس کی آواز پرومیننٹ ہو. یونفخو, ٹھیک ہے. آئی نمبر 20 میں جو ورڈ تھا وہ سویروتل, یہ جو ورڈ ہے نا اس میں یا کا ٹائم آپ کا کم تھا, چونکہ یا تشدید کے ساتھ ہے تو یہ حرفین ڈبل لیٹر ٹائم لے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا اور ٹائم دینا ہے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ, اس کا جو ٹائم ہے وہ آپ نے انکریز کرنا ہے. اوکے, پھر 21 میں جو ورڈ آ رہا ہے اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا, فور ریزن مجھے لگا کہ آپ کا را لائٹ ہے, یہاں پہ را لائٹ نہیں ہوگا, اس کو ہیوی کر کے پڑھیں گے. مِرْصَادًا, ٹھیک ہے, را کو ہیوی کر کے پڑھیں گے. جی جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سٹاپ پڑھیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبواب وسيرت الجبال فكانت أسرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. جزاك الله خير، السلام عليكم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹس گڈ ماشاء اللہ. جو آپ کا مخرج مجھے ویک لگا ان لیٹرز میں سے جو ہم پڑھ چکے ہیں، دیر واز ڈیم، تھوڑا سا ڈیم کے اوپر مزید ابھی پریکٹس کریں اور اسٹرانگ ہٹ کریں اس کو. جس پوائنٹ سے آپ ابھی ہٹ کری ہے نا، بالکل تھوڑا سا اس سے پیچھے لے کر جائیں ٹنگ کو، ٹنگ کو اس پوائنٹ سے تھوڑا سا پیچھے سے اٹھائیں اور پھر اسٹرانگ ہٹ کریں، تو آئی ہوپ کہ یہ اچھا آپ کو ساؤنڈ دے گا. جہنم، اور ہا کو بھی فوکس کریں، تھوڑا سا ہا بھی نا آپ کا ہا کی طرف ٹرن ہو رہا تھا. اس کے علاوہ آپ نے نا اسٹریٹ رکھنے ہیں الفات، جو الفات ہیں وہ تھوڑے تھوڑے نا مطلب ٹیڑھے لگ رہے تھے، جیسے بسم اللہ لا، تو یہ ساؤنڈ مجھے بہت اسٹریٹ نہیں لگی. الرحمن مان، یہ آپ نے نا اس کو بالکل اسٹریٹ رکھنا ہے کہ یہ ساؤنڈ آپ کی بالکل بھی ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے. جیسے یہاں پر ورڈ آ رہا تھا وفتحت السماء، تو یہ بھی مجھے تھوڑی سی ٹرن ہوتی ہوئی ساؤنڈ لگی ہے. السماء فکانت، میک شور کہ ٹنگ آپ کی سائڈ وے پریشر نہ دے رہی ہو، بالکل سائڈس کے اوپر، زبان کی جو سائڈس ہیں ان کے اوپر پریشر نہیں جانا چاہیے، بالکل آپ کا منہ ریلیکس ہوگا اور ساؤنڈ آپ کی اسٹریٹ آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، پھر یہاں پر ایک ورڈ تھا اس میں نا، جی آئی نمبر 17 میں جو ورڈ ہے الفصلی، آپ کا سواد اتنا زیادہ پرومیننٹ تھا کہ مجھے فا کی ساؤنڈ نہیں آئی. یوم الفس پس، تو فس، میک شور کہ فا کی ساؤنڈ پہلے اچھی آئے پھر سواد. یوم الفصلی، ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو یہ آپ نے انشاءاللہ اس کو تھوڑا پریکٹس میں رکھنا ہے. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سسٹر، آپ پڑھیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. جزاك الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جی اٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. تھوڑا مخرج آپ کا را کا ویک ہے، پر ان شاء اللہ ول ویٹ کہ ہم اس کو پڑھ لیں تو پھر اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے، ان شاء اللہ. دو جگہ کے اوپر مجھے آپ کا الف ہیوی لگا اور وہ دونوں الفات آپ کے واو کے ساتھ تھے، تو میک شور کہ جب بھی آپ واو کے ساتھ الف پڑھیں اسے ہیوی نہیں ہونے دینا. یہاں پہ یہ جو ورڈ آ رہے نا اف وا جا، یہ وا وا کی طرف ساؤنڈ جا رہی تھی، یعنی الف میں منہ میں پریشر ہے، وا نہیں اف وا، کھول دے منہ کو، یعنی آپ پریشر کو لوز آؤٹ کریں، الف کا جو اینڈ ہے وہ ہوا پہ ہونا چاہیے. اف وا جا، अब वाबा, इसको आपने माइंड में रखना है, कॉफ का हिट और फिर उसके बाद फॉरन पुल बैक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मी को कोटा, ठीक है, ये थोड़ा सा आपका यानी जो पुल बैक है वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, और बाकी जो था वो तो ठीक था। ये रॉ मुझे अभी भी वीक लग रहा है, ये जो आई नंबर 21 में है, इसको मजीद हैवी करें। मेरू मेरू सो दा, रॉ साकिन के बाद हैवी लेटर अगर आ जाता है और उसके पास कसरा नहीं होती तो फिर हम उसको हैवी पढ़ते हैं, ठीक है। मीर नहीं पढ़ना, मेरू सो दा, इंशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाहु खैरा जी। नेक्स्ट स्ट्रांग पढ़िए।
अस्सलाम वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. جزاك الله خير.
آمين وإياكم. जी, अभी जो है वो आपने ना थोड़ा मजीद प्रैक्टिस करनी है वसतुल हलक वाले लेटर्स के ऊपर। आइन एंड हा बोथ आर कमिंग बैक वीक, ठीक है। मेक श्योर हमजा और आइन की आवाज में फर्क हो, एक जैसी आवाज नहीं, आऊ करके नहीं, आऊज़ु बिल्लाह। फिर इसी तरह से जैसे यहाँ पर वर्ड आ रहा था وَفُتِحَتِ السَّمَاءِ, यहाँ पर भी आपने हा को अच्छा रखना है, हा की प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसी तरह से जो वाव है लेटर उसके लिए सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अफ वाजा वाजा, यानी वाव के लिए आपने वा नहीं पढ़ना, अफ वाजा नहीं पढ़ना, अब वाबा। तो थोड़ा सा इसके लिए वाव के लिए सर्कल बनाइए और फिर आपने उसको खोलना है मुंह को अलिफ के लिए, सही। तो हलकी लेटर्स के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, प्लस कॉफ के ऊपर भी आपने प्रैक्टिस करनी है। मी को ता, तो ये जो को है ये आपका अभी मखरज से नहीं आ रहा था, ठीक है। फिर थोड़ा सा डीम के ऊपर भी ध्यान दीजिए, इन जहन्नमा स्ट्रांग हिट होके अच्छा वापस आप लाने की कोशिश करें कि उसमें जा वाली आवाज नहीं होनी चाहिए, जहन्नम, ठीक है। इंशाल्लाह आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप लोग जो नहीं सुना सके वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में ना पहले हैंड रेज कीजिए, और जिन्होंने सुनाया है वो खुद से थोड़ा पीछे रहें ताकि सबको मौका मिल सके, ठीक है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वाली आयात पढ़ देती हूँ आपको, आय नंबर 23 से लेकर 30 तक करते इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاق إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Inshallah, up to there. Next week, inshallah, phir mulaqat karte hain. Barakumullahu feekum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.